ददा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्वशे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकान्तराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधाराधिवृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली बार श्री चैतन्य चरितामृत के दूसरे अध्याय की चर्चा चल रही थी, जिसमें श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनके मंगलाचरण के तीसरे श्लोक का वर्णन करते हैं। इसकी व्याख्या ये संपूर्ण तीसरे अध्याय में पाया जाता है। पहले भी हम सुन चुके हैं कि इस अध्याय के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं। कौन से हैं ये तीन उद्देश्य इस अध्याय के? इस अध्याय के द्वारा कविराज गोस्वामी क्या साबित करना चाहते हैं? पहली बात, माइक है क्या? फर्स्ट पॉइंट, फिर नेक्स्ट पॉइंट।
पहले नाम है कि ब्रह्मा परमात्मा और भगवान ये भगवान कृष्ण के अंश है।
ठीक है, दूसरी बात, यहाँ माइक दीजिए।
कृष्ण साधन,
दूसरी बात, और तीसरी बात, तीसरी बात हम क्यों कहते हैं इसे? सबसे पहली बात कि श्री कृष्ण सब तत्वों के मूल हैं। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए ऑटोमेटिक खुद ब खुद चैतन्य महाप्रभु सब तत्वों के मूल हो गए। तो इन तीन तत्वों का वर्णन इस अध्याय में पाया जाता है, और विशेष करके पहला तत्व या पहली बात कि श्री कृष्ण ही मूल तत्व हैं। श्री कृष्ण से ही जितने भी अन्य तत्व हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो ये दूसरा अध्याय जो है विशेष करके इस बात के लिए है। केवल अंत में कविराज गोस्वामी संक्षेप में कहते हैं कि यही श्री कृष्ण जो मूल हैं वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, परंतु ज्यादा प्रमाण आदि इस अध्याय में नहीं देते हैं। प्रमाण ये तीसरे अध्याय में पाया जाएगा, जिसमें कविराज गोस्वामी उनके मंगलाचरण के चौथे श्लोक की व्याख्या करेंगे, और वो बतलाएंगे कि महाप्रभु के अवतीर्ण होने के बाहरी कारण क्या है। परंतु इस अध्याय में केवल संक्षेप में ही वो कहते हैं कि महाप्रभु श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो अब तक हम देख चुके हैं कि श्री कृष्ण के शरीर के कांति या शरीर का तेज है यह ब्रह्म। यहां पर देखिए, यह तीसरा श्लोक, मंगलाचरण का तीसरा श्लोक, यहां ब्रह्म शब्द है जिसका वर्णन उपनिषदों में आता है। और ये ब्रह्म क्या है? तनुभा। तनुभा मतलब उनके शरीर की कांति है, ये है निराकार ब्रह्म। इस प्रकार से कविराज गोस्वामी ने पहले ही साबित कर दिया है कि श्री कृष्ण के शरीर की कांति निराकार ब्रह्म है। दूसरे अंतःयामी, अंतर्यामी वो कौन है? अस्य अंश विभवः। किनका वर्णन है यहां पर? परमात्मा का वर्णन। तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के कौन है? अंश मात्र हैं, उनके विस्तार के अंश हैं श्री कृष्ण के। तो ये है पहचान। और श्री कृष्ण हैं षड ऐश्वर्य संपन्न भगवान। षड ऐश्वर्य ही पूर्णो य इह भगवान स स्वयं अयम। ये स्वयं भगवान है, षड ऐश्वर्यों से युक्त हैं। और यही श्री कृष्ण जो षडैश्वर्य पूर्ण भगवान हैं, वो भी चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्यात् कृष्णात् जगति, न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वम् परम इह। तो इनसे अर्थात चैतन्य महाप्रभु से, चैतन्यात् कृष्णात् मतलब कृष्ण से, या चैतन्य महाप्रभु से बढ़कर कोई तत्व इस जगत में नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और श्री कृष्ण ये परम सत्य हैं, वो भगवान हैं। ये श्लोक तो आप नोट कर चुके हैं ना, ये मंगलाचरण का तीसरा श्लोक है। इस अध्याय की चर्चा करने के पहले ही इस श्लोक का उच्चारण हम कर चुके हैं, केवल आपको याद दिलाने के लिए पुनः ये श्लोक यहां पर बोर्ड पर लिखा गया है। तो अभी और आगे बढ़ते हैं। संक्षेप में ये याद कर लेते हैं कि जब ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान है, परंतु अन्य भगवत तत्वों के भी उद्गम हैं, इसके लिए चार बातें पिछली बार हमने चर्चा की थी। एक कि ब्रह्मा जी का संवाद श्री कृष्ण के साथ, जिसमें वो साबित करते हैं कि श्री कृष्ण ही कौन है? मूल नारायण है। श्री कृष्ण ही मूल नारायण है। और इसके लिए ब्रह्मा जी कितने कारण देते हैं? चार कारण देते हैं। आपको याद होगा ये पिछली बार और उसकी पिछली बार चर्चा की थी। और फिर अन्य तीन श्लोकों का प्रमाण रखते हुए कविराज गोस्वामी भी ये साबित करते हैं कि श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। विशेष करके ये एते चांस कलापुंसः, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा हम क्या सीख सकते हैं, जरा आप बताइएगा। माइक कहां पर है? हाँ, तो आप में से जो बोलना चाहिए, एते चांस कलापुंसः, इस श्लोक से हम क्या सीख सकते हैं? हाँ जी बोलिए।
इस श्लोक में वही भगवान है, परम भगवान है, और बाकी जो उनके अंश हैं और उनके अंश के अंश हैं, उसको कला कहते हैं, वो सब अवतार है। और शुद्ध गोस्वामी यहाँ वर्णन कर रहे थे, वो अवतारों के वर्णन करते समय वो कृष्ण का नाम लिए थे। तो बाद में फिर से वो ये श्लोक बताते समझाते हैं कि जो अवतार का वर्णन आया है वो कृष्ण जो है, वो नाम, वो कृष्ण जो है वो परम भगवान है, बाकी सब अवतार उनसे ही आते हैं।
अच्छी बात है। और विस्तार में विश्लेषण कीजिए इस श्लोक के पहले दो लाइन का। हाँ, माइक यहाँ दीजिए सामने। एक रिवीजन है ताकि आपको स्मरण आए कि पिछली बार क्या चर्चा हुई थी।
जो कहते हैं कि जितने अवतार हैं वो या तो अंश है या फिर अंश के अंश या कलाएं हैं, परंतु जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है।
सही है। और इस श्लोक के शब्दों के दृष्टिकोण से बताइए। हाँ, पीछे माइक दीजिए। विशेष करके यहाँ एते आदि मैंने विश्लेषण किया था, आपको याद होगा, तो उस दृष्टि से समझाइए एते का क्या मतलब है।
आपने बताया था ये सब, हाँ, कृष्ण को जैसे जानते हैं कृष्ण दास का उदाहरण दे बताया था, कृष्ण जो मुख्य है उसके बाद कृष्ण भगवान स्वयं।
नहीं, एते की बात पहले कीजिए, एते
एते मतलब ये सब जो दूसरे वर्णन किया गया था,
हाँ,
ये सब एते चांस है, क्या अंश है और कला है,
कौन किन का वर्णन है, एते मतलब ये सब कौन,
भगवान के हवाले से बता रहा हूं।
हाँ, जितने भगवान के अवतार हैं जिनका वर्णन कहाँ किया गया है, हाँ, तो ये श्लोक लिखने के पहले, कहने के पहले सूत गोस्वामी ने किनका वर्णन किया था, कितने अवतारों का, 22 अवतारों का वर्णन किया था। ये अवतार का, अवतारों का वर्णन सामान्य है या विशेष है, सामान्य रूप से सबका किया है, ठीक है। उनमें से कृष्ण का भी नाम है, है कौन से नंबर पे, 20वें नंबर पे। तो अनेक अवतारों का, 22 अवतारों का वर्णन सूत गोस्वामी कर चुके हैं, और ये वर्णन करने के बाद अब कह रहे हैं एते मतलब ये सब, जिन सब का अवतार में अभी अभी कर का वर्णन में अभी अभी कर चुका हूं, हाँ, इनके बारे में क्या कह रहे हैं सूत गोस्वामी, हाँ, मतलब ये जितने भी अवतार हैं ये सब जिनका वर्णन मैं अभी कर चुका हूं, ये सब या तो भगवान के पुंसह, पुंसह मतलब भगवान, भगवान के या तो वो अंश हैं या वो कला हैं, कला मतलब अंश के अंश, हाँ, फिर आगे बोलिए, ये सारे भगवान के अंश हैं या भगवान के अंश के अंश हैं, हाँ, आगे किंतु, हाँ, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है ना, कहाँ पे आता है ये शब्द किंतु, तू, हाँ बोलिए, इसका कहने का मतलब है कि पहले जब 22 अवतारों का वर्णन किया तो कृष्ण का सामान्य रूप से ज्ञान दिया पहले लाइन में, एते चांस कला पुंस, परंतु अब इस श्लोक के दूसरे लाइन में सूत गोस्वामी विशेष ज्ञान दे रहे हैं श्री कृष्ण का, कि ठीक है अवतार अनेक हैं, उनमें से एक कृष्ण भी है, परंतु श्री कृष्ण अन्यों की तरह केवल नहीं है, परंतु श्री कृष्ण स्वयं भगवान, ये सब अन्य कला या अंश हैं। जैसे एक और उदाहरण हम दें, साधारण उदाहरण, इस बात को दोहराने का कारण ये है कि ये बात अच्छी तरह से हमारे मन में बैठ जाए, क्योंकि ये हमारे मूल सिद्धांत हैं सब, तो इनको अच्छी तरह से पकड़ लेना हमारे मन में बहुत आवश्यक है। अगर हम कहते हैं ये सारे लोग नागरिक हैं लेकिन ये आदमी राजा है, राजा भी तो निवासी होता है ना राज्य का, ये सारे आदमी इस राज्य के निवासी हैं, परंतु ये आदमी ये राजा है, क्या राजा निवासी नहीं है, राजा निवासी है या नहीं है, है, परंतु अन्यों से थोड़ा भिन्न भी है, अलग भी है ना, सभी लोग निवास करते हैं राज्य के भीतर लेकिन उनमें से विशेष वो राजा है। तो पहले राजा का सामान्य रूप से ज्ञान दिया था कि जैसे अन्य निवासी हैं ये भी निवासी हैं, झूठ नहीं है वो, सत्य है, वो भी निवासी हैं जैसे कि दूसरे हैं, परंतु दोनों में अंतर भी है, अंतर क्या है कि ये राजा है और अन्य प्रजा है। तो विशेष ज्ञान अभी राजा का बाद में दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से एते च अंश कलह पुंस, जितने भी अन्य ये अवतार हैं ये सब भगवान के अंश हैं या कला हैं, लेकिन इनमें से एक ये जो है श्री कृष्ण, ये कौन है, स्वयं भगवान है, वो किसी के अंश नहीं है बल्कि वो अंशी हैं, अंशी और अंश में क्या अंतर है? अंशी से अंश आते हैं। अंशी मतलब जो पूर्ण है, जिनसे अंश उत्पन्न होते हैं, जो रूप किसी अन्य रूप के ऊपर निर्भर नहीं है, अन्य सभी रूप किसी एक रूप के ऊपर निर्भर है, परंतु श्री कृष्ण किसी अन्य रूप के ऊपर निर्भर नहीं है। आगे चल के चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश देने वाले हैं मध्य लीला में, अभी बहुत समय है उसके लिए। उस समय भी वो परिभाषा देते हैं भगवान के भिन्न भिन्न रूपों का, और वो कहते हैं ये स्वयं रूप एक है भगवान का, और इसका वर्णन, इसकी परिभाषा ये है कि जो रूप अन्य रूपों पर निर्भर नहीं है वो है श्री कृष्ण स्वयं रूप। और वो रूप कौन सा है स्वयं रूप भगवान का? श्याम सुंदर जो वृंदावन में ग्वालबाल हैं, वो है भगवान का स्वयं रूप। अन्य रूपों का आश्रय है ये। भगवान श्री कृष्ण का नाम एक है स्वाश्रय आश्रय। क्या मतलब? अपने आप के ही आश्रय हैं स्वयं, उनके लिए कोई दूसरा आश्रय नहीं है, अपने ही आश्रय हैं वो। लेकिन अन्य जितने भी हैं क्या है वो? आश्रित हैं, आश्रय नहीं। इसलिए अंतिम पॉइंट पिछली बार चर्चा की गई थी वो क्या है जरा बताइए फिर से। तो ये हो गई बात एते चांस कला पुंस की बात, और इसमें अंतिम श्लोक बताया गया था अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः इत्यादि। तो इस श्लोक का संक्षिप्त में वर्णन आप में से कौन करेंगे? और कोई जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं दिया है हाथ ऊपर कीजिए, आप में से जो इस श्लोक का वर्णन करना चाहेंगे। हाँ माइक यहां दीजिएगा। एते नहीं, अत्र सर्ग विसर्गश्च अंतिम पॉइंट अंतिम श्लोक वो तो हो गया, एते चांस की चर्चा हो गई। अभी अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः और बताइए कौन बताएंगे? हाँ मूल संक्षेप में बताइए केवल। तो यहाँ पर ये दस चीजें क्या हैं? क्या हैं ये दस चीजें? मतलब नहीं, भले लिस्टिंग न करें, दस चीजों का नाम नहीं बताएं, लेकिन क्या क्यों लिखा गया ये दस चीजें हैं क्या वास्तव में? तो ये दस चीजें क्या हैं? जिन तत्वों का वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है वो दस तत्व हैं। तो इन दस तत्वों में से अंतिम तत्व है आश्रयः, और जितने भी पहले नौ तत्व हैं वो आश्रित कहलाते हैं, उनके भी अलग अलग नाम हैं। यहां तक कि जो भगवान के अलग अलग रूप हैं वो भी आश्रय के ऊपर आश्रित हैं, ठीक है। तो इससे भी साबित होता है कि श्री कृष्ण ही आश्रय हैं, वृंदावन के श्री कृष्ण, क्योंकि दशम स्कंद में विशेष रूप से श्री कृष्ण के वृंदावन की लीलाओं का वर्णन है। हालांकि द्वारका लीलाओं का भी है, परंतु मूल रूप से दशमे दशमम लक्ष्यम, तो दशम अध्याय में स्कंद में दशमम जो दसवां विषय है उसका वर्णन आता है। तो वृंदावन के श्री कृष्ण आश्रय कहलाते हैं और अन्य सब आश्रित हैं। तो ठीक है, इन चीजों को आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब आगे कविराज गोस्वामी और भी बातें बताते हैं। कृष्णे रस्व रूपे रहय षड विध विलास प्राभव वैभव रूपे द्विविध प्रकाश। वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के छह प्रकार के विलास रूप हैं, ये ऐसे रूप है जिनमें वो विलास करते हैं, और इन छह रूपों का वर्णन अब कविराज गोस्वामी करने जा रहे हैं। और यहां पे इस चार्ट में आप देखेंगे ये छह भगवान के रूप हैं। तो पहले दो कौन से हैं पढ़िएगा। प्राभव, प्राभव और वैभव। अभी यहां पे श्लोकों में तो कविराज गोस्वामी ने प्राभव और वैभव के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की है, थोड़ा बहुत श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया है, परंतु यह विषय काफी गहरा है इसलिए इस समय इसकी चर्चा हम अधिक नहीं करेंगे। जब सनातन शिक्षा के विषय में हम पहुंचेंगे मध्य लीला के 20वें अध्याय में, तब हम प्राभव और वैभव आदि के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। जैसे हम स्वयं रूप तो कह ही चुके हैं, भगवान के तीन स्वयं तीन प्रकार के रूप होते हैं, स्वयं रूप, तद एकात्म रूप और आवेश रूप, और इनके भी अलग अलग विभाजन होते हैं, तो ये विस्तार में हम उस समय चर्चा करेंगे। इस समय केवल इतना कहेंगे कि भगवान के ये दो प्रकार के रूप हैं, प्राभव और वैभव। और इसके अलावा भगवान के दो अवतार भी हैं, दो प्रकार के अवतार। कौन से हैं दो प्रकार के अवतार? अंश अवतार और शक्त्यावेश अवतार। इनके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। कब चर्चा कर चुके हैं? पहले अध्याय में। किस प्रसंग में, किस समय में चर्चा की है पहले अध्याय में, याद कीजिए। अवतारों का वर्णन उस समय, ये अंश और आवेश दोनों का वर्णन हो चुका है। भक्तावतारक, भक्तावतारकान उस समय, ईश भक्ता, ईश ईश अवतारकान उस समय वर्णन हुआ था, ठीक है। तो ये भगवान के अंश अवतार और आवेश अवतार, और इनके भी प्राभव और वैभव रूप होते हैं। और जितने भी ये छह वर्ग हैं, ये और भी अनेक इसमें और वर्ग किए जा सकते हैं, प्राभव वैभव आदि अनंत रूप हैं ऐसे भगवान के। इन छह वर्गों को मिलाकर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण के रूप अनंत हैं, इनकी गणना नहीं की जा सकती है। अंश शक्त्यावेश रूपे द्विविध अवतार, बाल्य पौ गुण धर्म दुई दुई तो प्रकार। इसके अलावा और दो प्रकार के रूप भगवान के हैं, वो कौन से हैं पढ़िएगा। बाल्य और पौगंड। तो बाल्य का मतलब क्या है और पौगंड क्या है? बाल्य बचपन से लेकर या जन्म से लेकर, जन्म से लेकर 5 साल की आयु, यह बाल्यावस्था कहलाती है, या शिशु अवस्था या कौमार अवस्था। और फिर पौगंड क्या है? 6 साल से 10 साल तक, इसको पौगंड कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बाल्य रूप और पौगंड रूप को भी धारण करते हैं। बाल्य रूप में भगवान ने कौन से रस का आस्वादन किया? वात्सल्य रस। और ये स्वाभाविक है, जब बच्चा छोटा होता है तो विशेष करके माता पिता जो है वो बच्चे से प्रेम करते हैं। जब बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है तो स्वतंत्र हो जाता है, फिर वो भाव नहीं रहता, फिर उतना मिठास नहीं रहता उसमें जो कि शिशु अवस्था में रहता है। तो बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण ने वात्सल्य रस का आस्वादन किया, और पौगंड रस में सख्य रस का आस्वादन किया। पौगंड अवस्था वो है जब बच्चा अभी धीरे धीरे अपने माता पिता के संरक्षण से बाहर निकलने लगता है। अब उसे बाहर की दुनिया समझने लगती है कि क्या है। पहले तो अपने घर के अलावा माता पिता के अलावा कुछ और जानता नहीं है बच्चा। फिर 6 साल में फिर वो पाठशाला जाने लगता है, उसके मित्र होने लगते हैं, इधर उधर घूमने लगता है, दुनिया देखने लगता है, ये क्या है वो क्या है। और जब जैसे दोस्त होने लगते हैं, शुरुआत होती है दोस्तों की पहले, फिर उस समय अपने माता पिता का स्नेह को छोड़कर वो अपने मित्रों के साथ ज्यादा आनंद लेना पसंद करता है। फिर दिन भर खेलता है, फिर घर में बुलाना पड़ता है, चलो चलो पढ़ाई करो, भोजन ले लो, ये करो, सोने का समय हो गया, लेकिन खेल क्रीड़ा में ही ज्यादा रुचि रहती है। तो भगवान श्री कृष्ण जो कि मनुष्य समाज के रीत रिवाजों की नकल कर रहे हैं, उन्होंने भी ठीक ऐसे ही किया। तो ये भगवान के अवतार हैं, भगवान के विभिन्न दो रूप हैं जिनमें भगवान मनुष्य जीवन या मनुष्य समाज के तरीकों का नकल कर रहे हैं, और इसमें ज्यादा आनंद लेते हैं, वो इसमें बहुत रस लेते हैं। परंतु भगवान का नित्य रूप कौन सा है? कैशोर अवस्था। तो कैशोर अवस्था कौन से उम्र से शुरू होती है? 11 साल से। 11 साल से कब तक? 15 साल तक। 11 से 15 यह है कैशोर अवस्था। और फिर उसके बाद क्या है? यौवन। यौवन किस उम्र से शुरू होता है? 16 से आगे बढ़ते हुए 80 तक यौवन। नहीं है? चाहते तो सभी ऐसा है कि एक बार युवावस्था हो जाए तो हमेशा के लिए हम युवक ही रहें, परंतु ऐसा होता नहीं है। बहुत ही जल्दी युवावस्था खत्म हो जाती है, फिर यहां दर्द वहां दर्द सब शुरू हो जाता है। बाल सफेद होने लगते हैं, शक्ति ताकत कम हो जाती है, शरीर के भिन्न भिन्न अवयवों में फिर दर्द होने लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण का नित्य रूप उनके धाम में कैशोर है। श्यामम एवं परम रूपम, चैतन्य चरितामृत में भी ये बताया जाता है, ये परम रूप इनका है। ध्येयम कैशोरकम वयम, तो ये कैशोर का वय जो है, ये उम्र जो है, ये सबसे मीठा है, सबसे मधुर है। और भगवान इसी आयु में किशोर अवस्था में ही सदैव रहते हैं गोलोक वृंदावन में। परंतु जब वो ऐसे लीला करते हैं, जब वो ऐसे भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, तो बाल्य और पौगंड अवस्था के रूपों को भी स्वीकार करते हैं, और इन रूपों में भी वो लीला करते हैं। हालांकि उनका नित्य रूप किशोर रूप है। किशोर रूप में कौन से रस का आस्वादन विशेष करके भगवान श्री कृष्ण करते हैं? माधुर्य रस। और इसके बाद क्या होता है? जब श्री कृष्ण 11 साल के हो जाते हैं, 11 साल से बढ़ के फिर 15 साल के हो जाते हैं, फिर क्या होता है? फिर फिर पूर्ण विराम, फिर आगे नहीं बढ़ते हैं, फिर उनका शरीर जैसे है वैसे ही लगता है। शायद दुनिया में कितने लोग ऐसे सोचते होंगे, हम जैसे 20-25 साल की उम्र पहुंचे, इससे ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए शरीर, बस ऐसे ही शरीर हमारा रहना चाहिए और बुढ़ापा नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। लेकिन कृष्ण के साथ ऐसे होता है। कृष्ण केवल एक 15 या 16 साल के नव युवक की तरह सदैव प्रतीत होते हैं। कृष्ण की उम्र क्या है वास्तव में? जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए तो उनकी उम्र क्या थी? 10 और 11 के बीच में थी। विशेष करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं 10 साल और 8 महीने ये कृष्ण की आयु थी। परंतु दिखने में कितने वर्ष के दिखते थे वो? 15 साल के युवक दिखते थे। हालांकि उनकी उम्र वास्तव में केवल 10 से 11 के बीच में थी, लेकिन वो दिखते थे एक 15 साल के नव युवक की तरह। तो इसका मतलब है कि जब वो किशोर अवस्था को प्राप्त होते हैं और किशोर अवस्था के भी 3 स्तर होते हैं, एक किशोर अवस्था की शुरुआत, फिर मध्य किशोर और फिर किशोर अवस्था के अंत। तो इसका विस्तार में श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया है। परंतु याद रखने की बात केवल यह है इस संदर्भ में कि श्री कृष्ण का नित्य रूप गोलोक वृंदावन में किशोर अवस्था का है, और किशोर अवस्था होते हुए भी समय समय पर वो अपने बाल्य रूप और पौगंड रूप को भी प्रकट करते हैं। क्यों प्रकट करते हैं ऐसे? जब वो किशोर अवस्था उनके नित्य रूप है और माधुर्य अवस्था, माधुर्य रस जो है इतना श्रेष्ठ है, तो फिर ये बाल्य और पौगंड अवस्था को धारण करने का क्या कारण है? कौन बताएंगे? माइक बोलिएगा।
जो वात्सल्य रूप में जो भक्त है या फिर सांख्य रस में जो भक्त है वो भी आनंद ले सके।
बहुत अच्छा। ताकि वो स्वयं वात्सल्य और सख्य रस का आस्वादन कर सके, और इस रस में जो भक्त स्थित हैं वो भी भगवान के संग में इस रस का आस्वादन कर सके। तो क्या ये किशोर अवस्था में नहीं हो सकता, सख्य रस का आस्वादन और वात्सल्य रस का आस्वादन? क्या भगवान श्री कृष्ण किशोर अवस्था में अपने माता पिता से अच्छा संबंध नहीं रखते हैं? दीदी क्योंकि अब कृष्ण तो उम्र के हो गए हैं ना, 15 साल के हो गए, तो 15 साल में जो वात्सल्य भाव है वो इतना तीव्र इतना मधुर नहीं होता जितना कि कम उम्र में कौमार अवस्था में होता है। इसलिए विशेष करके अपने माता यशोदा और पिता नंद महाराज के ऊपर कृपा करने के लिए, और ऐसे जो भक्त वात्सल्य भाव में है वृंदावन में, ऐसे भक्तों के लिए वो कुमार अवस्था को स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार से पौगंड अवस्था में भी अपने ग्वाल बाल मित्रों के ऊपर कृपा करने के लिए और इस स्वाद का रस लेने, इस रस का स्वाद लेने के लिए वो प्रकट होते हैं। इस प्रकार से ये 6 रूप हैं भगवान के, और ऐसे जितने भी ये अवतार भी हैं भगवान के, इनके भी प्राभव वैभव हैं, रूप हैं, इसके बारे में हम कह चुके हैं। और फिर कविराज गोस्वामी कहते हैं इन 6 तरह के रूपों के, इन वर्गों के अनगिनत विविधता है, वैरायटी, अनगिनत रूप हैं कि कोई गिन नहीं सकता। और हालांकि ये 6 हैं फिर भी इनमें अंतर नहीं है। तो अभी आपके किताबों में न देखते हुए और यहां पर चार्ट में न देखते हुए अभी बताइए कि अभी क्या चर्चा की गई थी। अभी हम थोड़ा धीरे जाना चाहते हैं ताकि सभी लोग समझ लें, क्योंकि एक दो भक्त बता रहे थे कि अब तेजी से जाते हैं तो इतने मन में बात रहती नहीं है। हाँ बताइए, अब भगवान के 6 प्रकार के रूप जो विलास के लिए वो स्वीकार करते हैं वो कौन से हैं, बिना देखे हुए बताइए। हाँ जी, प्राभव, प्रभव नहीं, प्राभव और वैभव, ये 2 वर्ग हैं जिनकी चर्चा हम आगे चल के कब करेंगे, सनातन शिक्षा के समय करेंगे। अच्छा, और 2 कौन है अवतार भगवान के, 2 प्रकार के? हाँ कौन से? अंश अवतार और शक्त्यावेश अवतार। और दूसरे 2 रूप भगवान के? हाँ, उम्र के हिसाब से, पहले प्रकाश के हिसाब से, फिर अवतार के हिसाब से, और तीसरे उम्र के हिसाब से। उम्र के हिसाब से कौन से हैं? बाल्य, पौगंड। नित्य रूप भगवान का किशोर है, किशोर रूप, फिर भी भगवान ये रूप स्वीकार करते हैं। और इन 6 वर्गों में कुल मिलाकर कितने रूप हैं? असंख्य हैं, असंख्य, ठीक है। तो भगवान के ये छह प्रकार के रूपों का वर्णन करने के बाद अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करेंगे भगवान के तीन प्रकार के शक्तियों का। थोड़ा घुमाइएगा, तो ये तीन प्रकार के शक्ति कौन से हैं? अच्छा, बिना देखे आप बताइए भगवान के तीन प्रकार की शक्तियां कौन सी हैं? अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था शक्ति, ये तीन प्रकार की शक्तियां हैं। तो अंतरंगा का वर्णन कीजिए संक्षेप में। हाँ बोलिए। भगवान की योग माया शक्ति है जो हमेशा भगवान के साथ देती है। और क्या नाम है इस शक्ति के? लादनी एक विशेष रूप है, परंतु सामान्य रूप से नाम क्या है? हाँ योग माया तो है, और पूर्णमासी। हाँ अब पढ़िए, कोई पढ़िएगा आप में से, माइक में पढ़िए।
कृष्ण की तीन मूल शक्तियां हैं, चित्त शक्ति, माया शक्ति, तटस्थ शक्ति।
चित्त शक्ति के अन्य नाम क्या हैं?
स्वरूप शक्ति या अंतरंग शक्ति।
तो ये भगवान की आध्यात्मिक शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, चित्त शक्ति, स्वरूप शक्ति। ये शक्ति एक ही है, केवल नाम से अलग अलग दिए जाते हैं। और दूसरे प्रकार की शक्ति बहिरंगा शक्ति और
तटस्थ शक्ति।
बहिरंगा शक्ति के दूसरे नाम क्या है?
माया शक्ति।
माया शक्ति, ठीक है। और तीसरा
तटस्थ शक्ति या जीव शक्ति।
तो ये तीन प्रकार की शक्तियां हैं। तो अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति वास्तव में भगवान के की एक ही शक्ति है, लेकिन ये एक शक्ति अनेक कार्य संपन्न करती है। तो अलग अलग कार्यों को संपन्न करने के लिए उनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। वैसे मूल शक्ति तो एक ही है। जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि बिजली तो एक ही प्रकार की होती है, परंतु बिजली जब एक हीटर में जाती है तो गर्मी पैदा करती है, फ्रिज में जाती है तो ठंडक पैदा करती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये ठंडी बिजली है, गर्म बिजली है? बिजली तो बिजली है, लेकिन पात्र के अनुसार उसका प्रभाव या उसका परिणाम अलग होता है। उसी प्रकार से भगवान की अंतरंगा शक्ति उस क्षेत्र में काम करती है जहां सभी जीव शुद्ध हैं, वो है भगवान का धाम। इसलिए इस अंतरंगा शक्ति से समस्त वैकुंठ जगत बनता है। वैकुंठ जगत में बहिरंगा शक्ति भगवान की नहीं है, वहां पे सब कुछ चिन्मय है। चित्त शक्ति का प्रदर्शन वैकुंठ जगत में पाया जाता है, बल्कि सारा वैकुंठ जगत ही चित्त शक्ति का ही एक परिवर्तित रूप है, प्राकट्य है। और बहिरंगा शक्ति भगवान की वो शक्ति है जो कि ऐसे क्षेत्र में लागू होता है जहां लोग भगवान, जीव भगवान के विरुद्ध होते हैं, जहां वो इतने शुद्ध नहीं होते, तो वो है माया शक्ति। इस माया शक्ति के द्वारा समस्त जीव भ्रम में पड़ जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, श्री कृष्ण को भी भूल जाते हैं। श्री कृष्ण और भगवान के साथ और जीवों के साथ जो संबंध है वो भी भूल जाते हैं। और फिर तटस्था शक्ति, जो शक्ति या जीव जो तट पे हैं, किस तट पे हैं? आध्यात्मिक और भौतिक, तो दोनों शक्तियों के तट में है वो। जैसे नदी का एक तट होता है, एक ओर पानी दूसरी ओर जमीन, तो जीवात्माएं कौन से तट पर खड़े रहते हैं? आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति। तो मूलतः तत्वतः जीव कौन से शक्ति के अंतर्गत आते हैं? अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आते हैं। परंतु तटस्था क्यों माना जाता है? क्योंकि वो नहीं, अगर जीव शक्ति भगवान के धाम में भी हो फिर भी उसे तटस्था शक्ति कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इतने छोटे हैं, अणु कहलाते हैं, और कभी भी बहिरंगा शक्ति के चंगुल में फंसने की संभावना रहती है, इसलिए उनको तटस्था शक्ति कहते हैं, तट में स्थित होने वाले। जो व्यक्ति नदी के तट पे खड़ा है किसी भी समय फिसल के गिर सकता है, अगर वो सावधान नहीं रहा तो जल में गिर जाएगा। तो इसलिए इसे तटस्था शक्ति कहते हैं। तो पढ़िए नीचे क्या लिखा हुआ है तीनों वर्गों में।
वैकुंठ धाम चित्त शक्ति वैकुंठ धाम को धारण करती है, माया शक्ति अनंत ब्रह्मांड का कारण है, तटस्थ शक्ति असंख्य जीवात्मा है।
और कविराज गोस्वामी कहते हैं मुख्य तीन शक्ति तार विभेद अनंत। तो ये तो केवल मुख्य शक्तियों का वर्णन है, लेकिन इनके भी विभेद हैं, वो अनंत हैं। फिर आएगी बात लादिनी शक्ति, संधिनी, संवित आदि। ये तीन शक्ति कौन से शक्ति के विभाजन है? चित शक्ति के। इस प्रकार से अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाए तो अनेक तरह से ये विभाजन किया जा सकता है। अनंत अनंत विभेद कविराज गोस्वामी कहते हैं। तो केवल एक उन्होंने ऊपरी रूप से एक विभाजन किया हुआ कि तीन प्रकार के शक्तियां हैं भगवान की। और फिर आगे चल के कविराज गोस्वामी कहते हैं स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्ण सर्वाश्रय, परमेश्वर कृष्ण सर्व शास्त्र कोय। तो स्वयं भगवान कृष्ण हैं और कृष्ण सबके आश्रय हैं, परम ईश्वर ही कृष्ण है, और ऐसा सर्व शास्त्र कहते हैं। और फिर वो ब्रह्म संहिता के श्लोक को दोहराते हैं जो कि चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत से लाया था, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। और फिर कविराज गोस्वामी एक महत्वपूर्ण बात बोलते हैं कि यही श्री कृष्ण, श्री कृष्ण अवतारी ब्रजेंद्र कुमार, आपने चैतन्य रूपे कोइलो अवतार, कि यही अवतारी ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण अब प्रकट हुए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। अर्थात इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, चैतन्य महाप्रभु भी अवतारी हैं, वो अंश नहीं है, वो अंशी हैं, ठीक है, वो भी स्वयं भगवान है। जैसे कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहा जाता है, वैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी कहा जाता है। इसलिए वो कहते हैं अतएव चैतन्य गोसाई पर तत्व सीमा, तारे क्षीरोदकशाही को ही की तार महिमा। तो चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, अवतारी हैं, इसलिए उनको अगर क्षीरोदकशाही विष्णु पुकारा गया तो उनकी महिमा की वृद्धि नहीं होती है इससे। और क्यों नहीं होती? क्योंकि समस्त अवतार जो हैं, जितने भी भगवान के विस्तार हैं, कला हैं, अंश हैं, अवतार हैं, ये सब श्री कृष्ण के दिव्य शरीर में सम्मिलित हैं। इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं अवतारी देह सब अवतारी स्थिति केह को न मते कहे जामन जार मति। वो कहते हैं अवतारी देह सब अवतारे स्थिति। अवतारी अवतारी मतलब श्री कृष्ण अवतारों के उद्गम। तो अवतारी अर्थात श्री कृष्ण या श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में जितने भी अवतार हैं वो स्थित हैं। केहो कोनो मते कहे जैमुन चार मोती, तो अपने अपने मति, अपने अपने बुद्धि, अपने भाव के अनुसार हम उसी श्री कृष्ण को या चैतन्य महाप्रभु को अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं और ये गलत नहीं होगा। जैसे कोई श्री कृष्ण से कहेगा ये तो विष्णु है, तो क्या ये गलत है? नहीं। कोई कहेगा यही श्री कृष्ण वामन है, क्या ये गलत है? नहीं। यही व्यक्ति, यही श्री कृष्ण नरसिंह देव है, गलत नहीं है। क्यों नहीं है गलत? जबकि हम देख चुके हैं कि अवतारी और अवतारों में भेद भी है और अभेद भी है। भेद हम देख चुके हैं कि ये अवतारी हैं और ये अवतार हैं, परंतु उनको कहना कि श्री कृष्ण ही वामन है या श्री कृष्ण ही क्षीरोदकशायी विष्णु हैं, ये गलत क्यों नहीं है? बताइए, हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, माइक वहां दीजिए। अभी अभी हम पढ़े उस श्लोक को, उसी श्लोक के दृष्टि से बताइए। अभी अभी जो श्लोक हमने पढ़ा, अभी जो व्याख्या हमने की, हाँ, जितने भी अवतार हैं वो सब श्री कृष्ण के दिव्य शरीर में स्थित हैं। जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं वृंदावन में, तो उस समय वृंदावन की लीला बड़े आनंद से श्री कृष्ण करते हैं, परंतु ऐसे श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब वृंदावन में वो अनेक असुरों का वध करते हैं तो वो वध कौन करते हैं? बताइए, उनके अंदर जो विष्णु रूप है वो विष्णु रूप वध करते हैं उन असुरों का। वृंदावन के श्री कृष्ण जो हैं वो वध नहीं करते हैं, वो तो केवल रासलीला करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, गौओं को चराने जाते हैं, ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करते हैं। ये कृष्ण के कार्य हैं वृंदावन। तो जब ऐसे असुर प्रवेश कर भी लेते हैं और ऐसे असुरों का वध श्री कृष्ण करते हैं, तो प्रभुपाद समझाते हैं कि हमें जानना चाहिए कि वास्तव में ये वृंदावन के कृष्ण नहीं बल्कि उनके अंदर जो विष्णु रूप है वो करते हैं, इसलिए ऐसे देखा जाता है कि पूतना का वध करते समय भी, हालांकि ये कहना गलत नहीं है कि कृष्ण ने किया पूतना का वध, परंतु विशेष, ये सामान्य है, लेकिन विशेष रूप से वध करने वाले हैं विष्णु या वासुदेव कृष्ण, तो वो भी श्री कृष्ण के दिव्य शरीर में उपस्थित हैं, तो उन्होंने वास्तव में पूतना का वध किया। इसलिए जब ब्रजवासी गण इधर उधर ढूंढ रहे थे श्री कृष्ण को, और ढूंढते ढूंढते बड़े मैदान में आए जहां की पूतना लेट गई थी और मर गई थी, और उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अपने बाल्य रूप में पूतना के स्तनों के ऊपर केवल खेल रहे थे, मानो एक साधारण बच्चा है, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या हुआ है। उस समय श्री कृष्ण की आयु क्या थी? बहुत कम थे, 6 महीने से भी कम थे वो सब। छह दिन? नहीं। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ऐसे रमण कर रहे थे, वहां पर आराम से लेटे हुए थे, मानो कि ऐसे बच्चा ऐसे ऐसे जमीन पे छोड़ दीजिए, कैसे आराम से रहेगा। उधर श्री कृष्ण वहां पर थे, जैसे उनको पता ही नहीं कि उन्होंने क्या किया, इतना बड़ा कार्य उन्होंने कर दिया, पूतना जैसे राक्षसी का वध किया, जैसे कृष्ण को पता ही नहीं है। उसी प्रकार से जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई, उस समय श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के सामने अनेक विष्णु रूपों को प्रकट किया, चतुर्भुज विष्णु रूपों को। ये भी भगवान के विष्णु रूप जब बाहर आए, तो कृष्ण तो वहां पर उस समय केवल 5 साल के बालक थे, और वो उस भाव में पौगंड में प्रवेश करने ही वाले थे। और उस समय जब ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने दंडवत किया, हाथ जोड़ के स्तुति करना आरंभ किया, तो श्री कृष्ण ने ऐसा व्यवहार किया कि मानवों को जानते ही नहीं है। और वैष्णव आचार्य समझाते हैं कि श्री कृष्ण इस प्रकार से ब्रह्मा जी की ओर देखने लगे कि अरे ये स्वर्ण कांति वाला चतुर्मुख व्यक्ति कौन है, ये कहां से आ गया ये व्यक्ति, मैं तो अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेल रहा था, मैं तो गऊओं को चरा रहा था, हम लोग आराम से यहां बैठ के मजा कर रहे थे, और ये कहां से आए बड़े व्यक्ति एकदम से, और ये क्यों हाथ जोड़ के खड़ा है मेरे सामने, और क्या मेरी प्रार्थना कर रहा है, स्तुति कर रहा है, ये कौन है। इसलिए हमें आगे भी पढ़ा इसी अध्याय में कि जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे भगवान आप ही नारायण हैं, आप ही मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, आपके नाभि से उत्पन्न होने वाले कमल से मेरा जन्म हुआ है, तो उस समय कृष्ण ने क्या उत्तर दिया आपको याद है, क्या बताया कृष्ण ने, माइक दीजिए, माइक में बताइए।
मैं तो साधारण ग्वाल बाल हूँ और हमारे जन्म तो नारायण गर्भगृह से विष्णु के नाम से हुआ।
तो कृष्ण ने कहा रे मैं तो गोप हूँ, मैं तुम्हारा पिता कैसे हो गया। अरे आपके पिता तो नारायण हैं जो जल में शयन करते हैं, जो सबके हृदय में स्थित हैं, मैं तो ग्वाल बाल हूं, मैं यहां गऊओं को चराता हूं, मैं भला तुम्हारा पिता कैसे हो सकता। तो वे ब्रह्मा ने क्या उत्तर दिया, आप ही वही नारायण हैं, तो सुनिए मैं आपको प्रमाण देता हूं कि आप कैसे नारायण हुए, बल्कि नारायण आपके अंश हैं, आप नारायण के उद्गम हैं। फिर ब्रह्मा जी ने वो सारे प्रमाण प्रस्तुत किए यहां पहले वाले पॉइंट में। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण अपने मूल रूप में खड़े थे वहां पर, एक ग्वाल बाल है, ग्वाल बाल को क्या पता होता है कि इतने विष्णु क्या है, विष्णु रूप क्या है, उनको ये सब योग शक्ति की क्या परवाह है, वो तो केवल एक ग्वाल बाल है, गऊओं को चराते हैं, क्रीड़ा करते हैं बस, उनको दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। तो स्वयं रूप में भगवान श्री कृष्ण अपने आप को एक ग्वाल बाल मान लेते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि लीला मतलब भगवान को, भगवान जब एक अमुक प्रकार से विचार करते हैं, सोचते हैं, तो उसको लीला कहते हैं। जब भगवान सोचते हैं कि मैं एक ग्वाल बाल हूं और उस हिसाब से वो कार्य करते हैं, तो वो लीला है। लेकिन हम भले कुछ भी सोचें वो होगा नहीं, हम भले सोचे कि मैं करोड़पति हूं तो हम कुछ काम करेंगे, मैं राजा हूं ऐसे कार्य करूंगा तो हम तकलीफ में पड़ जाएंगे, परंतु भगवान जब ऐसा सोचते हैं तो उनका ये सोचना ये लीला है, तो ये भगवान का स्वयं रूप है। तो भगवान अपने स्वयं रूप में ऐसे सोचते हैं कि मैं बच्चा हूं, मैं बालक हूं, मैं गायों को चराता हूं, वो विष्णु के बारे में नहीं सोचते हैं, वो कभी ये नहीं सोचते कि मेरी शक्ति अपार है और ये सारे विष्णु रूप मेरे अंश अवतार हैं, ये सब नहीं सोचते हैं। वो केवल पूरी तरह से मग्न हो जाते हैं अपने लीला में, वो केवल इतना ही जानते हैं कि मैं यशोदा नंदन हूं, नंद नंदन हूं, और मेरे ग्वाल बालों का मित्र हूं, और गोपियों के साथ में मैं रासलीला करता हूं, बस इतना ही वो जानते हैं। तो ब्रह्मा जी जब आए तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि ये क्या है ब्रह्मा जी, मैं तो कुछ नहीं जानता। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर में जितने भी उनके विस्तार हैं, अवतार हैं, वो स्थित हैं, और सही समय पर भगवान के अलग अलग कार्यों को संपन्न करने के लिए वो अपने शक्ति को प्रकट करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ही रहते हैं, विष्णु अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, फिर से श्री कृष्ण फिर से आ जाते हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण अपने ही नित्य अवस्था में स्थित रहते हैं। फिर कविराज गोस्वामी इसलिए कहते हैं केहो कहे कृष्ण क्षीरोदक शाही अवतार असंभव नाहे सत्य वचन सवार। कोई कहते हैं कि श्री कृष्ण क्षीरोदक शाही विष्णु के अवतार हैं, तो ये जितने भी सारी बातें हैं, जो जैसे कि श्री कृष्ण वामन हैं, श्री कृष्ण विष्णु हैं, या श्री कृष्ण क्षीरोदक शाही विष्णु के अवतार हैं, ये सब अपनी जगह में सत्य हैं और ये असंभव नहीं है, परंतु हमें जान लेना चाहिए कि फिर भी श्री कृष्ण अवतारी हैं। और आगे कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अब जितने भी श्रोतागण हैं जो चैतन्य चरितामृत सुन रहे हैं उनके चरणों में मैं वंदन करता हूं। ऐशव सिद्धांत सुनो करो एक मन, इस हिसाब से इन सारे सिद्धांतों का श्रवण करके बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि ध्यान से सुनने से क्या लाभ होगा अगले चार्ट में बताइए। ये श्लोक हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। क्या लिखा है? जो अभी बात हमने कही वो चार्ट में कहा है, तो कोई पढ़िएगा। इसके पहले हम जो कह रहे थे, हाँ कोई पढ़िए माइक से।
सभी अवतार परम भगवान की मौलिक विग्रह में स्थित है, मौलिक विग्रह में स्थित है, इसीलिए कृष्ण को उनमें अनेक अंशों से व्याख्यान करना गलत नहीं है।
ठीक है, आप समझ गए ना इसी बात को कि कृष्ण को नारायण कहना, कृष्ण को वामन कहना गलत नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे घुमाइए। नहीं ये श्लोक तो नहीं, गलत लिखा है श्लोक, ये वाला नहीं है। गलत श्लोक लिख दिया, कोई बात नहीं। ये श्लोक नहीं था। ठीक है, कविराज गोस्वामी कहते हैं श्लोक क्रमांक 117 है में, सिद्धांत बोलिया चित्ते न करो आलस, यह होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप में से कितने भक्तों ने श्लोक को सुना है पहले? बहुत भक्तों ने सुना है, तो अपने भाषा में श्लोक का मतलब समझाइए। माइक कहाँ है? माइक किसी भक्त को दीजिए, जो समझाना चाहते हैं आप समझाइए। बहुत अच्छा, और भी कोई समझाइए इस श्लोक का अर्थ? माइक दीजिए, और कौन समझाएंगे? हाथ ऊपर कीजिए। जल्दी से दीजिए।
साधारण सिद्धांत जो है वो ऐसा लीला की तरह इतना बहुत इंटरेस्टिंग नहीं रहता, तो सुनने के लिए आनंद नहीं आता, लेकिन सिद्धांत को समझने के बाद व्यक्ति का मन भगवान के चरण में
सही है। कविराज गोस्वामी जानते हैं कि इन्होंने अब तक बहुत दर्शन दिए हैं, बहुत सिद्धांतों का वर्णन किया है। हो सकता है किसी श्रोतागण को, कभी कोई किसी श्रोता को लगे कि अरे वो बहुत भारी है दिमाग के लिए, हाँ इतना सब पढ़ना, प्राभव वैभव ये वो, इतने सारे तरह तरह की चीजें, कौन अवतारी अवतार, सब बहुत मुश्किल है समझना। तो कोई कहे चलो भूल जाओ क्या है समझना, तो कविराज गोस्वामी कहते हैं नहीं, आलस नहीं करना। सिद्धांत बोलिए चित्ते ना करो आलस, ये सिद्धांत है, बहुत भारी है, ये दर्शन है, ये सब मेरे लिए नहीं है। हम तो केवल हरिनाम जप करेंगे, वो भी अच्छा है हरिनाम केवल जप करेंगे तो, परंतु ऐसे सिद्धांतों को सुनने के लिए अगर दिमाग को थोड़ा कष्ट देते हैं तो इससे क्या लाभ होगा? क्या कहते हैं कविराज गोस्वामी? सुदृढ़ मानस, हमारा मन जो, हमारी श्रद्धा जो है श्री कृष्ण के चरण कमलों में, वो सुदृढ़ हो जाएगी। अन्यथा क्या होता है कि हम हरि नाम में हम श्रद्धा रखते हैं, हम हरि नाम लेते हैं, परंतु अगर श्रीमद् भागवत श्री चैतन्य चरितामृत भगवद गीता आदि हम बारंबार सुनते नहीं हैं और हमारे दिमाग को थोड़ा कष्ट नहीं देते हैं इन चीजों को समझने के लिए, तो क्या होगा? हमारा मन डावाडोल होने की पूरी संभावना होती है। जब जीवन में कोई ऐसी वैसी समस्या आ जाती है तो फिर भगवान को हम दोष देंगे, ऐसे क्यों हुआ, या साधना में हम कमजोर पड़ जाते हैं, या कभी मन विचलित हो जाता है, या हम भक्ति मार्ग को छोड़कर या दूसरे किसी मार्ग को स्वीकार करते हैं, या इस भक्ति के पथ को छोड़कर दूसरे किसी भक्ति के पथ को स्वीकार करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि इन चीजों को समझने के लिए हमें पीछे हटना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि बात समझ में नहीं आ रही है तो चलो छोड़ दो, फिर भी सुनते रहिए सुनते रहिए, ऐसा कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जो भगवद गीता पढ़ते हैं परंतु सही सिद्धांत उनको कोई सिखाते नहीं है, इसलिए उनकी समझ गलत हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि सही परंपरा में आने वाले सिद्धांत को अच्छी तरह से हम जान लें, और इसको जान लेने की के लिए कोई आलस नहीं करें। अब ये चैतन्य चरितामृत के विशेष करके पहले 12 अध्याय है ना, इसमें ऐसे कई सिद्धांत मिलेंगे, इसलिए क्लास में आना बंद नहीं करें कृपा करके, कोई ये सोच करके ये बहुत भारी है बहुत वजनदार है दिमाग के लिए, और वो भी दोपहर का समय, धूप है बाहर, गर्मी है और यहाँ नींद आती है, भारी भारी बातें सुनने से अच्छा नहीं लगता। तो नहीं, ऐसे आलस नहीं करना है, ऐसे कविराज गोस्वामी कहते हैं। हमें पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए इन चीजों को समझने के लिए। और फिर कविराज गोस्वामी कहते हैं, चैतन्य महिमा जानी एषव सिद्धांत चित्त दृढ़ होना लागे महिमा ज्ञान होते। तो ऐसे सिद्धांत का अध्ययन करने से मुझे चैतन्य महाप्रभु के बारे में पूरी तरह से जानकारी हुई है। केवल ऐसे महिमा के ज्ञान से हमारी आसक्ति उनके चरणों के प्रति सुदृढ़ हो सकती है। तो महिमा के जानने का लाभ है कि हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है। चैतन्य प्रभुर महिमा को ही बार तौरे कृष्ण र महिमा को ही घोरी विस्तारे। तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के महिमा का वर्णन विस्तार में करने के लिए मैंने कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है। कल हमको माधवेंद्र प्रभु बता रहे थे, आपने पूरा क्लास चैतन्य चरितामृत का दिया लेकिन महाप्रभु का नाम एक बार भी क्लास में नहीं आया। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन इसलिए कर रहा हूं ताकि महाप्रभु का वर्णन हो सके, नहीं तो कृष्ण का वर्णन क्यों करते यहां पर कविराज गोस्वामी। देखिए इस सारे अध्याय में 121 श्लोक हैं, इनमें से कितने श्लोकों में कविराज गोस्वामी ने महाप्रभु का नाम लिया है? अधिकतर तो केवल कृष्ण के बारे में कहा है उन्होंने, कृष्ण तत्व का वर्णन विस्तार में किया है। अब अगले अध्याय में, तीसरे अध्याय में वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में विस्तार में वर्णन करेंगे। जैसा हम पहले सुन चुके हैं, इस अध्याय के तीन उद्देश्य हैं। एक, ये साबित करना कि श्री कृष्ण सब तत्वों के मूल हैं। दूसरी बात कि श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में अंतर नहीं है। और तीसरी बात कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही मूल तत्व हैं। परंतु विशेष करके पहले बात की ही चर्चा या व्याख्या इस अध्याय में हुए है, और बाकी दो जो हम आने वाले तीसरे अध्याय में पढ़ने वाले हैं, वहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़े विस्तार में साबित करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ही वही अवतारी श्री कृष्ण हैं। परंतु यहां कविराज गोस्वामी का उद्देश्य है यह स्थापित करना कि श्री कृष्ण मूल तत्व है, इसलिए महाप्रभु के बारे में विस्तार में उन्होंने यहां पे इस अध्याय में नहीं बताया है। केवल अध्याय के अंत में और शुरुआत में थोड़ा बहुत उन्होंने बस باتوں باتوں میں کہہ دیا ہے, اسی لیے وہی مہاپربھو شری کرشن ہیں, کوئی انتر نہیں ہے, بس ایسا ہی کہتے ہیں. چیتنیا گوسائی رے تتو نروپن سوئم بھگوان کرشن برجندر نندن. تو نشکرش کیا ہے کہ چیتنیہ مہاپربھو سوئم بھگوان کرشن ہیں, وہی برجندر نندن کرشن ہیں, یہ نشکرش ہوتا ہے اس ادھیائے کا. اور پھر اس شلوک کے اس ادھیائے کی شروعات میں پھر سے جاتے ہیں. اس سمے کبیراج گوسوامی پہلے ہی شلوک میں کہتے ہیں, شری چیتنیا پربھم وندے بالوپی یت انگرہات ترے نانا مت گراہ ویاپتم سدھانت ساگرم. شری چیتنیا پربھم وندے, میں شری چیتنیہ مہاپربھو کے چرنوں میں وندنا کرتا ہوں, جن کی انگرہ سے, جن کی کرپا سے ایک بالک بھی, بالہ اپی یت انگرہات, جن کی کرپا سے ایک بالک بھی نانا مت گراہ ویاپتم سدھانت ساگرم ترین. ایک ساگر ہے, کون سا ساگر ہے؟ سدھانت ساگر. سدھانت اتنے ہیں درشن کے کشیتر میں کہ یہ ساگر کے سمان ہے. جس پرکار سے ایک ساگر میں بہت جل رہتا ہے, اسی پرکار سے یہ سدھانت ساگر میں طرح طرح کے سدھانت ہیں. ان میں سے کئی سدھانت صحیح بھی ہیں اور کئی سدھانت غلط بھی ہیں. تو جو غلط سدھانت ہیں ان کی تلنا کبیراج گوسوامی مگر مچھوں سے کہتے کرتے ہیں. اگر مان لیجیے آپ کوئی ندی تیر کے جانا چاہتے اور مگر مچھ اچانک آپ کے پاس آ گیا تو بڑا خطرہ ہے, ہو سکتا ہے مگر مچھ شریر کو کھا لے, پورا ختم کر دے. تو کسی جلاشے میں اگر ہم تیر رہے ہیں اور وہاں پہ مگر مچھ ہے تو بہت خطرہ ہے وہاں پر. تو اسی پرکار سے کبیراج گوسوامی کہتے ہیں کہ اس سدھانت کے ساگر میں بھی ایسے گراہ یا ایسے مگرمچھ ہیں. کون سے مگرمچھ ہیں یہ خطرناک؟ نانا مت, الگ الگ مت والے ایسے مگرمچھ ہیں, جیسے کہ کوئی ناستک واد ہے, کوئی بھوگ واد ہے, کوئی یہ واد اور وہ واد, مایا واد, طرح طرح کے واد ہیں. تو سدھانت کے ساگر کو تیر کے جانا اور صحیح سدھانت کو کے پاس پہنچنا اور اسی کو سویکار کر کے جیون کے لکش کو پراپت کرنا, یہ بہت مہتوپورن ہے. تو کبیراج گوسوامی کہتے ہیں کہ مہاپربھو کی کرپا سے ایک چھوٹا سا بالک بھی صحیح تتو کو جان سکتا ہے. اور اس پرکار سے یہ انیہ جتنے بھی غلط تتو ہیں, غلط واد ہیں, ان سے پربھاوت نہیں ہوگا. اور ایسے وادوں کے سر کے اوپر اپنے چرن رکھ کے وہ بھگوان کے دھام کی پراپتی کر لے گا. جیسے بتایا جاتا ہے کہ دھرو مہاراج کے لیے جب سمے آیا ویکنٹھ جانے کے لیے تو وہاں پر وشنو دوت آئے ان کے ویمان میں, اور ان کا شریر تو وہی تھا. تو جب وہ ویکنٹھ لوک میں پرویش کرنا تھا تو مورتیمان مرتیو جو ہے ان کے سامنے آ گیا, کیونکہ مرتیو کا سامنا کیے بغیر ہم کیسے جا سکتے ہیں دوسرے لوک میں. تو دھرو مہاراج نے کیا کیا, مرتیو کے, مورتیمان مرتیو کے سر کے اوپر قدم رکھ کے وہ ویمان میں چڑھ گئے. تو آپ سب کی حالت بھی ایسی ہی ہونے والی ہے, حالت نہیں, آپ سب کی اوستھا ایسے ہونے والی ہے. آپ جب سب آپ کے لیے جب ویکنٹھ ویمان آ جائیں گے گولوک ورنداون سے, پھر میں آپ مرتیو کے سر پہ پیر رکھ کے آپ اندر ویمان میں پرویش کر سکتے ہیں, پھر گولوک ورنداون سیدھے چلے جائیں گے. تو اسی پرکار سے یہاں جتنے بھی غلط مت ہیں, نانا مت ہیں, غلط غلط مایا واد, یہ واد, وہ واد, ایک چھوٹا بچہ بھی ان مگر مچھوں کے اوپر پیر دے کے آرام سے تیر کے سدھانت ساگر کو پار کر سکتا ہے اور گولوک ورنداون پہنچ سکتا ہے. तो ये कविराज गोस्वामी का आशीर्वाद है। आप जानते हैं ना, हर एक अध्याय में वैसे वे एक ना कोई मंगलाचरण रहता है। हम कह रहे हैं कि पहले अभी 14 श्लोक हैं जो पहले अध्याय के वो मुख्य मंगलाचरण के श्लोक हैं, परंतु हर एक अध्याय में आप मंगलाचरण पाएंगे। अलग अलग श्लोक कविराज गोस्वामी कहते हैं, बड़े सुंदर श्लोक एक से एक। तो इस अध्याय में विशेष रूप से मंगलाचरण ये है, वो आशीर्वाद करते हैं, आशीर्वाद देते हैं महाप्रभु की ओर से कि जो भी ऐसे चैतन्य चरितामृत को पढ़ेगा, चैतन्य लीला का श्रवण करेगा श्रद्धा से, तो महाप्रभु की कृपा से वो इन सारे मगरमच्छों के सर के ऊपर पैर देके आसानी से तैर पाएगा ये सिद्धांत सागर को। तो ये है श्रुति फल, फल श्रुति चैतन्य चरितामृत के श्रवण करने का। तो अगली बार दूसरे अध्याय के ऊपर क्या होगा, परीक्षा होगा। तो आज क्या है, शुक्रवार है ना या मंगलवार, क्या है, शुक्रवार है, तो मंगलवार को ठीक है परीक्षा होगी दूसरे अध्याय के ऊपर। ठीक है, आप सब तैयार होंगे, आप में से कितने भक्त परीक्षा देना चाहेंगे उस हिसाब से हमें वो जेरोक्स वगैरह करना होगा ना, अंदाज कितने हैं। ठीक है, 40 पिछली बार की तरह है, तो आप अच्छी तरह से पढ़ के आइएगा और अगली बार परीक्षा, उसके बाद तीसरे अध्याय की शुरुआत होगी। तो कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, माइक वहां दीजिएगा जरा। हरे कृष्ण।
श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है। यह हम इस अध्याय के चर्चा समझे तो एक भक्त से हमारा वार्तालाप हो रहा था, तो वो बता रहे थे कि जो दूसरे संप्रदाय हैं, चार संप्रदाय से एक संप्रदाय जो है जैसे कि श्री संप्रदाय है या हमारे ब्रह्मवादी गौड़ संप्रदाय है जो मानव संप्रदाय है, वो लोग क्या चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानते हैं?
केवल गौड़ी संप्रदाय के भक्त ही श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानते हैं, जानते हैं, केवल मानते नहीं जानते हैं, अन्य नहीं मानते हैं, वो उनको एक महान भक्त मानते हैं लेकिन भगवान नहीं मानते। निम्बार्क संप्रदाय के बारे में हमें जानकारी नहीं है, हो सकता है वो भी माने, परंतु श्री संप्रदाय में तो वो जानते नहीं है ज्यादा चैतन्य महाप्रभु के बारे में, और मध्व संप्रदाय में तो मानते नहीं है। हरि विजय प्रभु कहते हैं जो भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को पढ़ता है वो मानता है चैतन्य महाप्रभु को कि ये भगवान है। हाँ, पूरी लीलाएं पढ़े तब और श्रद्धा से सुने तब, परंतु अन्य संप्रदायों में ऐसे कई लोग हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं, ये प्रश्न था। हाँ, जो श्रद्धा से सुनेगा अवश्य फलश्रुति तो मिलेगी। तो वही बात है, जो कृष्ण भगवान के बारे में सुनता नहीं है वो भी कृष्ण को भगवान नहीं मानता, लेकिन फिर भी ऐसे कई लोग होते हैं जो भले भगवत गीता नहीं सुन रहे हो ध्यान से, लेकिन अगर उनको बोलते हैं कि कृष्ण भगवान है वो मान लेते हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु के बारे में लोगों ने ज्यादा सुना नहीं है, यही कारण है। लेकिन आने वाले दिनों में ये समस्या नहीं रहेगी, जैसे जैसे इस कौन का प्रचार बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे आप सब प्रचार करते जाएंगे, तो आपके प्रचार की वजह से सब जगह महाप्रभु की लीलाओं का प्रचार होगा, तो चैतन्य महाप्रभु को अधिक से अधिक लोग जानने लगेंगे। देखिए, पहले विदेश की बात तो दूर है, भारत में भी थोड़े ही लोग जानते थे चैतन्य महाप्रभु कौन है। आजकल ऐसा कोई देश नहीं है जहां पे महाप्रभु मंदिरों में सिंहासन पे नहीं विराजमान हो, चाहे वो चीन हो, अफ्रीका हो, दक्षिण अमेरिका हो, जहां भी हो। तो महाप्रभु को अब लोग जानने ही लगे हैं, तो केवल समय की बात है। धीरे 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 से जैसे चैतन्य चरितामृत का और भी प्रचार होगा, वैसे वैसे लोग समझने लगेंगे कि महाप्रभु कौन है, क्योंकि आखिर वो है युग अवतार, इस युग का के लोगों का उद्धार करने के लिए विशेष करके प्रकट हुए हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ, माइक दीजिए।
इसे भागवत में इतना स्पष्ट रूप से किया है कि कृष्ण ही परम तत्व है, निशा से परम तत्व। कई लोग भागवत को पढ़ने के बाद भी नहीं मानते कृष्ण को, जैसे मध्यस्थ करने वाले भी फिर भी वो नहीं मानते कृष्ण को परम तत्व, वो किस तरह से व्याख्या करते हैं?
वो अलग दृष्टि से उसको मानते हैं, परंतु चैतन्य चरितामृत में भी अलग अलग जगह पे ये बहुत सारा प्रमाण दिया हुआ है। अगर हो सके तो, अगर हमें समय मिले तो हम लिस्ट बनाएंगे उन सब श्लोकों का अलग अलग शास्त्रों से, जो प्रमाण देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ही परम सत्य हैं। तो हमारे प्रचार के लिए, हमारी श्रद्धा के लिए, हमारे पढ़ाई अध्ययन के लिए बहुत लाभदायक होगा। ठीक है, आप में से कोई भक्त ये सेवा करना चाहेंगे? गृहपाठ सब भक्तों की सेवा के लिए, जितने भी प्रभुपाद की किताबों में सब है। देखिए, यहां इसके बाहर, इनके बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यहीं पर है। अगर आप में से कोई ये सेवा करना चाहे कि जितने श्लोक हैं वो श्लोक फिर कौन से ग्रंथ से है, कौन से शास्त्र से है, और उसका अनुवाद क्या है, फिर अगला श्लोक, ऐसे कई श्लोक हैं, बस उनको अच्छी तरह से लिखना है और फिर उसको टाइप करा के सब भक्तों को बांटेंगे, फिर आप उसको रख सकते हैं आपके साथ में हमेशा के लिए। आप में से कोई भक्त, थोड़ी पढ़ाई करनी होगी आपको, हम बताएंगे आपको कहां क्या मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कौन करना चाहेंगे? हाँ जी, कुछ समय के बाद। अच्छा, नहीं अभी से शुरुआत करना अच्छा है। ठीक है, राधाकांत प्रभु और घनश्याम प्रभु तो अच्छा, फिर आप टीम बनाइए आपका। ठीक है, तो सब भक्तों के लिए बहुत अच्छी सेवा होगी। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में ही है, केवल आपको प्रभुपाद के तात्पर्य में देखना है। एक जगह तो उन्होंने बड़े विस्तार में सारे तात्पर्य भर में ये चैतन्य महाप्रभु का प्रमाण दिया है। ठीक है, चैतन्य उपनिषद से, पुराणों से, उपनिषदों में से दिया है। कई ऐसे लोग होते हैं जो पुराणों का प्रमाण नहीं मानते, वो कहते केवल श्रुति प्रमाण हमें दीजिए, स्मृति प्रमाण हम नहीं मानते हैं। तो श्रुति प्रमाण भी है, उपनिषदों का प्रमाण भी है। बहुत अच्छा, बहुत दे दीजिए, अब ले लीजिए इसे। ठीक है, हाँ ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है, काफी लेट हो गया तो अब यहाँ समाप्त करते हैं। तो अभी अगली बार क्लास में परीक्षा होगी, तो आप कृपया अच्छी तरह से पढ़ के आइएगा, और पिछली बार की तरह भी परीक्षा काफी सरल होगा। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप में से जो आपके पहले परीक्षा के पेपर नहीं दिए हैं अभी तक, कृपया दे दीजिएगा, आपको हम लौटा देंगे वो पेपर, केवल मार्क नोट करने हैं। हरे कृष्णा।